एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगा रहे हैं। दुनिया है पुरातत्व की, यानी आर्कियोलॉजी की।
हाँ,
और इस सफर में हमारे गाइड है पॉल बान और उनकी किताब आर्कियोलॉजी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
बिल्कुल। किताब भले ही वेरी शॉर्ट हो, पर यह दिखाती है कि पुरातत्व का कैनवस कितना बड़ा है ना?
सही बात। और ये विषय मतलब सिर्फ पुरानी टूटी फूटी चीजों के बारे में नहीं है। सोचिए, मानव इतिहास का 99% हिस्सा।
99%? बाप रे।
हाँ, वो हिस्सा जिसके बारे में लिखा हुआ कुछ मिलता ही नहीं, तो उस जमाने को, उन लोगों को कैसे समझें? उसका जरिया वो है पुरातत्व, इसीलिए ये इतना जरूरी है।
हाँ, मतलब वो इंडियाना जोन्स वाली छवि से तो एकदम ही अलग है मामला।
बिल्कुल, वो तो फिल्में हैं।
आज हम पॉल बान की मदद से यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई असल में पुरातत्वविद करते क्या हैं, उनका काम कितना साइंटिफिक है और क्यों मायने रखता है।
ये सिर्फ खजाने की खोज नहीं, ये तो अपने ही अतीत को, अपनी जड़ों को समझने की एक गंभीर कोशिश है।
तो चलिए पहले लेखक से ही थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। पॉल बान।
हाँ, पॉल बान जाने माने ब्रिटिश पुरातत्वविद हैं। कैम्ब्रिज से PhD, मतलब फील्ड में काफी बड़ा नाम है उनका।
और उनकी कोई खासियत, मतलब किस चीज पर ज्यादा काम किया है उन्होंने?
उनकी स्पेशलिटी है प्राग ऐतिहासिक कला, खासकर वो हजारों साल पुरानी गुफाओं की पेंटिंग्स नहीं होती हैं,
अरे हाँ
वो फ्रांस और स्पेन वाली,
बिल्कुल।
उनमें उनकी गहरी रुचि और विशेषज्ञता है। और दुनिया भर में उन्होंने फील्ड वर्क किया है, तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव भी जबरदस्त है।
सही, मतलब जमीन से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं।
हाँ, और जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये कि वो मुश्किल से मुश्किल वैज्ञानिक बातों को भी ना बड़े आसान और दिलचस्प तरीके से समझा देती हैं।
अच्छा।
हाँ, वो एक बहुत मशहूर आर्कियोलॉजी टेक्स्ट बुक है, कॉलिन रेनफ्रो के साथ लिखी है, उसके को ऑथर भी हैं। तो एक तरफ गहरी अकादमिक पकड़, दूसरी तरफ आम लोगों तक बात पहुंचाने का हुनर, ये कॉम्बिनेशन कमाल का है।
समझ गया। तो मतलब वो हमें पुरातत्व की दुनिया की एक सच्ची अंदरूनी तस्वीर दिखाते हैं।
बिल्कुल, जो वैज्ञानिक तौर पे करीबी हो और साथ में दिलचस्प भी लगे। वो फिल्मी मिथकों को तोड़ते हैं,
हाँ, वो इंडियाना जोन्स वाला मिथक।
वही, और समझाते हैं कि देखो, असल में पुरातत्व ज्ञान की एक गंभीर खोज है, अतीत के रहस्यों को सुलझाने की एक वैज्ञानिक कोशिश।
ठीक है, तो अब आते हैं किताब पर। आर्कियोलॉजी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जैसा नाम है वैसा ही काम, संक्षिप्त परिचय।
हाँ, कह सकते हैं ये पुरातत्व का एक छोटा लेकिन बहुत ही सारगर्भित परिचय है। मकसद है कि इस फील्ड से जुड़े जो बुनियादी सवाल है ना,
जैसे
जैसे कि पुरातत्व है क्या, कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है, इन सब के साफ और ईमानदार जवाब देना।
और आपने वो छवि वाली बात कही थी, इंडियाना जोन्स वाली,
हाँ,
वो इसका एक बड़ा मकसद है कि लोगों के मन में जो वो टोपी चाबुक वाले हीरो की छवि है पुरातत्वविद की,
हाँ,
उसे बदलकर एक असली तस्वीर सामने रखना।
बान बताते हैं कि पुरातत्वविद असल में एक डिटेक्टिव जैसा होता है,
अच्छा।
जासूस,
हाँ।
गहरे समय का जासूस, जो बहुत धैर्य से, साइंटिफिक तरीकों से बिखरे हुए सुरागों को, मतलब पुरानी चीजों को जोड़कर हजारों साल पुरानी कहानी बुनता है।
वाओ, ये सुनने में ज्यादा दिलचस्प लग रहा
है ना?
है।
और ये किताब बताती है कि पुरातत्व सिर्फ राजा रानी का इतिहास नहीं है,
हाँ, ये जरूरी है।
ये आम इंसान का इतिहास है, उन लोगों की कहानी जिनके बारे में शायद कभी कुछ लिखा ही नहीं गया। किताब शुरू होती है परिभाषा से, पुरातत्व क्या है,
और क्या नहीं है।
जैसे डायनासोर का अध्ययन नहीं है। बिल्कुल, वो पॉइंट वो शुरू में ही क्लियर कर देते हैं, फिर थोड़ा इतिहास बताते हैं कि कैसे ये फील्ड विकसित हुआ।
मतलब पहले जो सिर्फ शौकिया तौर पर पुरानी चीजें जमा करते थे।
हाँ, पुरावशेषवाद जिसे कहते हैं, वहां से लेकर एक प्रॉपर वैज्ञानिक अनुशासन बनने तक का सफर। और फिर किताब का बड़ा हिस्सा इस बात पर है कि काम होता कैसे है, साइट्स कैसे ढूंढते हैं, खुदाई कितनी सावधानी से करनी पड़ती है, चीजों की उम्र कैसे पता लगाते हैं।
वो कार्बन डेटिंग वगैरह।
हाँ, वो सब। और फिर लैब में चीजों का एनालिसिस कैसे होता है।
और ये सिर्फ चीजों को देखने या उनकी उम्र पता करने तक ही सीमित नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तकनीकों से आगे बढ़कर उन मुश्किल नैतिक और राजनीतिक सवालों को भी उठाती है जो इस फील्ड से जुड़े हैं।
जैसे
वो आपने कहा था अतीत का इस्तेमाल। हाँ, जैसे क्या अतीत का इस्तेमाल राजनीतिक मकसदों के लिए होता है, पुरानी चीजों पर असल में हक किसका है, और आज के जमाने में पुरानी जगहों को बढ़ते शहरों या लड़ाई झगड़ों से कैसे बचाया जाए?
ये तो वाकई बड़े सवाल हैं।
बिल्कुल,
चलिए अब जरा किताब के कुछ अहम हिस्सों में और गहराई से उतरते हैं। पहला चैप्टर ही पूछता है, पुरातत्व आखिर है क्या?
हाँ, और बान बहुत साफ बताते हैं, ये इंसान के बीते कल का अध्ययन है उसके छोड़े हुए भौतिक सुरागों के जरिए।
भौतिक सुराग मतलब?
मतलब औजार, बर्तन, इमारतें, यहाँ तक कि कूड़ा कचरा भी, हर वो चीज जो इंसान ने पीछे छोड़ी।
अच्छा, कचरा भी?
हाँ, कचरा बहुत कुछ बताता है, और ये डायनासोर वाली जीवाश्म विज्ञान से अलग है, ये याद रखना जरूरी है। फोकस सिर्फ इंसान और उसके पूर्वजों पर है।
और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है?
सबसे बड़ी ताकत ये हमें इतिहास के उस विशाल हिस्से में झांकने का मौका देती है जिसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, वो 99% हिस्सा।
हाँ, वो 99% वाली बात तो दिमाग में बैठ गई है।
सोचे ना, लिखने की कला तो बस कुछ हजार साल पुरानी है, इंसान तो लाखों साल से हैं, उन लाखों सालों की कहानी कौन बताएगा?
सिर्फ पुरातत्व।
ये उन आम लोगों को आवाज देता है जिनका जिक्र शाही इतिहास की किताबों में शायद कभी नहीं आता।
बिल्कुल। अब दूसरा अध्याय वो पुरातत्व के इतिहास के बारे में है।
हाँ, उसकी एक छोटी सी झलक। शुरू में लोग बस खजाने या अजीबोगरीब चीजों के लिए जमीन खोदते थे, उसे पुरावशेषवाद कहते थे, संदर्भ वगैरह से कोई मतलब नहीं।
बस चीज चाहिए थी।
हाँ, फिर धीरे धीरे समझ बढ़ी, लोगों ने स्तरीकरण यानी स्ट्रेटिग्राफी को पहचाना।
स्ट्रेटिग्राफी वो क्या है?
मतलब ये समझना कि मिट्टी की परतें एक के ऊपर एक समय के साथ जमती है, तो जो परत जितनी नीचे होगी वो उतनी ही पुरानी होगी।
अच्छा, लॉजिकल है।
हाँ, थॉमस जेफरसन ने भी अमेरिका में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। फिर डेनमार्क में एक म्यूजियम क्यूरेटर थे, क्रिश्चियन थॉमसन। उन्होंने म्यूजियम की चीजों को उनके मटेरियल के हिसाब से क्रम में लगाया। पत्थर का युग, कांसे का युग, लोहे का युग, इसे थ्री एज सिस्टम कहते हैं।
हाँ, ये तो सुना है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज।
वही, ये टाइमलाइन बनाने की तरफ एक बड़ा कदम था। फिर आए जनरल पिट रिवर्स जैसे लोग।
जनरल, फौज वाले?
हाँ, उन्होंने एकदम मिलिट्री अनुशासन के साथ खुदाई और हर छोटी बड़ी चीज की रिकॉर्डिंग का तरीका शुरू किया, बहुत बारीकी से। वहीं से मॉडर्न आर्कियोलॉजी की नींव पड़ी कह सकते हैं।
समझ गया। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। तीसरा अध्याय, पुरातत्व करते कैसे हैं, खोजना और खोदना, साइट्स मिलती कैसे हैं?
कई तरीके हैं। एक तो है फील्ड वॉकिंग, मतलब पैदल घूमकर जमीन की सतह पर ही पुराने बर्तनों के टुकड़े, औजार वगैरह ढूंढना।
अच्छा, ऊपर ही मिल जाते हैं कभी कभी?
हाँ, बिल्कुल। फिर है एरियल फोटोग्राफी, हवाई जहाज या ड्रोन से तस्वीरें लेना। इससे जमीन पर बने पुराने घरों या खेतों के वो निशान दिख जाते हैं जो नीचे से पता नहीं चलते, क्रॉप मार्क्स वगैरह।
और वो एक लेजर वाली तकनीक भी बताई थी आपने।
हाँ, लाइडार। लाइडार कमाल की चीज है। सोचिए, हवाई जहाज से लेजर बीम भेजकर जमीन का एक पूरा 3D नक्शा बन जाता है।
3D नक्शा?
हाँ, और ये घने जंगलों के आर पार भी देख सकता है, मतलब जंगल के नीचे छुपी पुरानी दीवारें, रास्ते सब दिख जाते हैं, जैसे एक्सरे विजन हो।
अरे वाह,
अमेज़न में अभी हाल में इसी से कई शहर मिले हैं।
अरे वाह, ये तो कमाल है। फिर जब साइट मिल गई तब खुदाई?
हाँ, फिर आती है खुदाई यानी एक्सकवेशन। लेकिन यहाँ बान एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं।
क्या?
कि खुदाई अपने आप में एक विनाशकारी प्रक्रिया है, डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि एक बार आपने किसी जगह को खोद दिया तो वो वैसी कभी नहीं रहेगी जैसी थी, वो जानकारी हमेशा के लिए बदल जाती है।
ये तो सोचने वाली बात है।
इसीलिए हर चीज को, हर परत को बहुत बहुत सावधानी से रिकॉर्ड करना सबसे ज्यादा जरूरी है, हर डिटेल मायने रखता है।
और यहीं पर वो संदर्भ वाली बात आती है ना?
बिल्कुल, पुरातत्व का सबसे बड़ा मंत्र संदर्भ ही सब कुछ है।
इसका मतलब क्या हुआ? ठीक,
इसका मतलब है कि कोई चीज कहाँ मिली, जमीन में कितनी गहराई पर यानी वर्टिकल लोकेशन, और बाकी चीजों के संबंध में कहाँ यानी हॉरिजॉन्टल लोकेशन, और उसके आसपास क्या क्या मिला, ये सारी जानकारी खुद उस चीज से भी ज्यादा कीमती हो सकती है।
अच्छा, चीज से भी ज्यादा?
हाँ, बान कहते हैं संदर्भ के बिना कोई पुरानी मूर्ति बस एक सुंदर चीज है, लेकिन संदर्भ के साथ वो इतिहास का एक पन्ना बन जाती है।
जैसे पहेली का टुकड़ा।
एकदम सही उदाहरण, अकेला टुकड़ा कुछ नहीं कहता, पर सही जगह लगते ही पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इसीलिए जो लूटी हुई चीजें होती है ना,
हाँ,
वो इतनी बुरी क्यों होती हैं, क्योंकि उनका संदर्भ हमेशा के लिए खो जाता है, वो कहानी अधूरी रह जाती है।
ये तो बहुत ही अहम बात है, मतलब चीज से ज्यादा उसकी लोकेशन और आसपास की चीजें जरूरी है।
हाँ, अब चौथा अध्याय, डेटिंग और विश्लेषण, उम्र कैसे पता चलती है चीजों की।
हाँ, ये कैसे पता लगता है कि कोई चीज 100 साल पुरानी है या 1000 साल?
मोटे तौर पर दो तरीके हैं, एक है सापेक्ष यानी रिलेटिव डेटिंग, ये बस इतना बताती है कि दो चीजों में कौन सी पुरानी है और कौन सी नहीं,
जैसे वो मिट्टी की परतें,
नीचे वाली पुरानी ऊपर वाली नई,
बिल्कुल, या फिर चीजों की बनावट या स्टाइल देखकर अंदाजा लगाना, टाइपोलॉजी।
लेकिन इससे पक्की तारीख नहीं मिलती।
तो पक्की तारीख के लिए?
उसके लिए है निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट डेटिंग, ये सालों में एक तारीख या एक रेंज बताती है।
इसमें सबसे फेमस तो वो कार्बन डेटिंग है, C14।
हाँ, रेडियो कार्बन डेटिंग, C14 सबसे जानी मानी तकनीक है। इसका सिद्धांत बड़ा सरल है, हम सब जीवित प्राणी, पौधे और जानवर वातावरण से कार्बन का एक खास आइसोटोप लेते हैं, कार्बन-14।
अच्छा,
जब कोई जीव मर जाता है तो वो C14 लेना बंद कर देता है, और उसके शरीर में मौजूद C14 एक जानी हुई रफ्तार से, जिसे हाफ लाइफ कहते हैं, कम होने लगता है। तो किसी पुरानी हड्डी, लकड़ी या कोयले के टुकड़े में कितना C14 बचा है, ये नाप कर वैज्ञानिक उसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पिछले करीब 50,000 साल तक की चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी है।
50,000 साल काफी है, और भी तरीके हैं?
हाँ, कई हैं, जैसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी पेड़ों के तनों में जो गोल छल्ले होते हैं ना,
हाँ, हर साल एक बनता है।
बिल्कुल, उनको गिनकर और पैटर्न मिलाकर डेटिंग होती है। फिर थर्मोल्यूमिनेसेंस है, जो पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की डेटिंग में काम आती है।
अच्छा, और लैब में और क्या क्या होता है?
लैब में चीजों का बहुत गहरा विश्लेषण होता है, वो किस मटेरियल से बनी है, कैसे बनाई गई हैं, और सिर्फ कलाकृतियां ही नहीं, इको फैक्ट्स का भी अध्ययन होता है।
इको फैक्ट्स मतलब?
मतलब पर्यावरण से जुड़े अवशेष, जैसे पुराने बीज, जानवरों की हड्डियां, पराग के कण, इनसे पता चलता है कि उस जमाने में लोग क्या खाते थे, मौसम कैसा था, माहौल कैसा था।
वाह, मतलब पूरी की पूरी दुनिया रिक्रिएट करने की कोशिश।
हाँ, एक तरह से। अब पांचवा अध्याय थोड़ा सैद्धांतिक है।
पुरातत्व सिद्धांत।
सिद्धांत मतलब फिलॉसफी टाइप।
हाँ, कुछ वैसा ही।
यहाँ सवाल ये है कि जो चीजें हमें मिली उनका मतलब कैसे निकालें? सिर्फ चीजें इकट्ठी कर लेना तो काफी नहीं है, अतीत की व्याख्या कैसे करें?
इंटरप्रिटेशन।
एग्जैक्टली। यहाँ 1960 और 80s के दशक की दो बड़ी विचारधाराओं की बात होती है, प्रक्रियात्मक प्रोसेशुअल और उत्तर प्रक्रियात्मक पोस्ट प्रोसेशुअल पुरातत्व।
ये तो बड़े भारी नाम लग रहे हैं।
है थोड़े, पर आसान भाषा में समझें तो प्रक्रियात्मक वाले पुरातत्व को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक और ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते थे, वो समाज में होने वाले बड़े बदलावों के पीछे के नियम खोजना चाहते थे, जैसे खेती क्यों शुरू हुई, राज्य कैसे बने। वो मानते थे कि मानव व्यवहार के कुछ यूनिवर्सल नियम होते हैं।
अच्छा, नियमों की तलाश।
हाँ, लेकिन फिर 80 के दशक में उत्तर प्रक्रियात्मक वाले आए, उन्होंने कहा, रुको, इंसान सिर्फ नियमों से नहीं चलता, तुम उसकी सोच, उसके विश्वास, उसकी विचारधारा, चीजों के सिंबॉलिक मतलब को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो।
बात तो सही है।
उन्होंने कहा कि व्याख्या हमेशा सब्जेक्टिव होती है, हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अतीत के लोग सोचते कैसे थे, अपनी दुनिया को क्या मायने देते थे। इसे संज्ञानात्मक पुरातत्व, कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी भी कहते हैं।
तो एक तरह से एक फोकस कैसे हुआ पर था और दूसरा लोगों ने क्या सोचा पर।
हाँ, मोटे तौर पर कह सकती हैं, ये दो अलग अलग लेंस हैं अतीत को देखने के। अब आते हैं सातवें अध्याय पर, जो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कौन सा?
अतीत के उपयोग और दुरुपयोग। बैन यहां बहुत साफ कहते हैं कि अतीत कोई मरी हुई शांत चीज नहीं है, ये आज भी जिंदा है, बहुत शक्तिशाली है, और इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जाता है और किया जा सकता है।
बुरे कामों के लिए जैसे?
जैसे नाजियों ने अपनी नस्लवादी विचारधारा को सही ठहराने के लिए जर्मनिक अतीत की एक खास व्याख्या का इस्तेमाल किया, या कई राष्ट्रवादी आंदोलन होते हैं जो अपनी जमीन से एक बहुत पुराना अटूट रिश्ता साबित करने के लिए पुरातत्व का सहारा लेते हैं।
मतलब अतीत की व्याख्या निष्पक्ष नहीं होती हमेशा,
अक्सर नहीं होती। उस पर आज की राजनीति, आज के एजेंडे का असर पड़ता है। अतीत एक हथियार बन सकता है।
और फिर विरासत की विनाश का मुद्दा भी है।
हाँ, वो बहुत बड़ा संकट है। एक तो है अवैध खुदाई और तस्करी। लोग पुरानी जगहों को लूटते हैं कीमती चीजों के लिए और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। इससे वो चीजें तो मिलती हैं, पर उनका पूरा संदर्भ
हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
बिल्कुल। फिर युद्ध हैं। हमने देखा है कैसे अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध या सीरिया में पलमायरा जैसे अनमोल धरोहरों को तबाह किया गया।
हाँ, वो तो बहुत दुखद था।
और तीसरा बड़ा खतरा है हमारा अपना विकास। शहर फैल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बांध बन रहे हैं, और इस चक्कर में ना जाने कितनी पुरानी बस्तियां, पुराने सबूत हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं।
इसी से जुड़ा वो सवाल भी है कि पुरानी चीजों पर हक किसका है, प्रत्यावर्तन यानी रिपेट्रिएशन का।
हाँ, ये बहुत ही पेचीदा और भावनात्मक मुद्दा है। एल्गिन मार्बल्स का उदाहरण सबसे मशहूर है। वो यूनान के पार्थेनन मंदिर की मूर्तियां हैं जिन्हें लॉर्ड एल्गिन 19वीं सदी में ब्रिटेन ले गए थे। आज वो ब्रिटिश म्यूजियम में है
और ग्रीस उन्हें वापस मांग रहा है
सालों से। इसी तरह अमेरिका में कैनविक मैन का केस था। एक बहुत पुरानी मानव खोपड़ी मिली जिसपे वैज्ञानिकों और स्थानीय मूल निवासी जनजातियों के बीच हक को लेकर विवाद हुआ। ये सवाल कि अतीत का मालिक कौन है, बहुत मुश्किल है।
बात तो है। और आखिरी अध्याय,
आठवां अध्याय देखता है अतीत का भविष्य। नई नई टेक्नोलॉजियां कैसे इस फील्ड को बदल रही हैं।
जैसे वो डीएनए वाली बात।
हाँ, प्राचीन डीएनए यानी एडीएनए, पुरानी हड्डियों या दांतों से डीएनए निकालकर अब वैज्ञानिक लोगों के बीच जेनेटिक रिश्ते, वो कहाँ से कहाँ गए, माइग्रेशन पैटर्न, यहाँ तक कि पुरानी बीमारियां कैसे फैली, ये सब पता लगा सकते हैं।
कमाल है।
और आइसोटोप विश्लेषण है जिससे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति बचपन में कहाँ रहता था या उसकी डाइट क्या थी।
टेक्नोलॉजी तो वाकई सब कुछ बदल रही है।
बिल्कुल। और एक और चीज जिसका महत्व बढ़ रहा है वो है CRM यानी कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट।
ये क्या है?
इसे बचाओ पुरातत्व भी कहते हैं। इसका मतलब है कि कहीं भी कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, कोई सड़क, बांध, बिल्डिंग, तो उससे पहले पुरातत्वविद जाकर उस जगह का सर्वे करते हैं
ताकि अगर वहाँ कोई पुरानी साइट हो तो उसे बचाया जा सके।
हाँ, या कम से कम उसकी खुदाई करके जानकारी रिकॉर्ड की जा सके नष्ट होने से पहले। ये अतीत को बचाने की एक बहुत जरूरी कोशिश है। और बान का आखिरी संदेश भी यही है। अतीत एक अनमोल खजाना है, पर ये नॉन रिन्यूएबल है। एक बार नष्ट हो गया तो हमेशा के लिए गया। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
तो इस पूरी चर्चा से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी?
पहली और शायद सबसे जरूरी बात, पुरातत्व एक गंभीर कठोर विज्ञान है, कोई रोमांटिक खजाने की खोज नहीं। इसमें धैर्य लगता है, बारीकी लगती है और वैज्ञानिक विश्लेषण की जरूरत होती है।
सही। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में बैठ गई, संदर्भ ही सब कुछ है। कोई चीज अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी ये जानकारी कि वो कहाँ और कैसे मिली।
बिल्कुल। और ये बात लूटपाट के खिलाफ एक बहुत बड़ा तर्क है।
तीसरा, टेक्नोलॉजी इस फील्ड को लगातार बदल रही है, क्रांति ला रही है। रेडियो कार्बन डेटिंग से लेकर लाइडार और एजीएनए तक नई खोजें हमें अतीत को और बेहतर समझने का मौका दे रही हैं। ये एक डायनेमिक फील्ड है।
हाँ, और चौथा, ये पूरी मानव जाति के इतिहास को आवाज देता है, सिर्फ राजा महाराजाओं के नहीं। लिखित इतिहास तो अक्सर एलीट क्लास पर फोकस करता है, पर पुरातत्व उन 99% लोगों की कहानी बताता है जिनके बारे में लिखा नहीं गया। आम लोग, औरतें, बच्चे, वो संस्कृतियां जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं थी।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पांचवा,
अतीत कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, वो हमेशा राजनीतिक और विवादित होता है। अतीत की व्याख्याओं का इस्तेमाल आज की पहचान बनाने, दावे करने और सत्ता के लिए संघर्ष में होता है।
और आखिरी बात,
आखिरी कि हमारी ये साझा विरासत बहुत नाजुक है और ये दोबारा नहीं बन सकती। पुरातात्विक स्थल सीमित हैं और उन पर खतरा मंडरा रहा है, उन्हें बचाना बहुत जरूरी है।
ये सब बातें पॉल बान ने अपनी किताब में कुछ यादगार तरीकों से कही हैं, जैसे वो एक जगह कहते हैं सार रूप में।
हाँ, वो कहते हैं कि पुरातत्व एक तरह से कचरे का विज्ञान है। हम मानवता की कहानी उन चीजों से जोड़ते हैं जिन्हें लोगों ने फेंक दिया या पीछे छोड़ दिया, है ना कमाल की बात।
हाँ, मतलब बड़ी कहानी छोटी फेंकी हुई चीजों से बनती है।
बिल्कुल। और वो संदर्भ वाली बात पर भी जोर देते हैं, संदर्भ के बिना एक कलाकृति सिर्फ एक सुंदर वस्तु है, संदर्भ के साथ वो इतिहास का एक टुकड़ा है। ये तो जैसे पुरातत्व का मूल मंत्र है।
सही। और अतीत के राजनीतिक इस्तेमाल पर भी उन्होंने कुछ कहा था?
हाँ, कि अतीत कोई ऐसी शांत जगह नहीं जहाँ हम बस घूमने जा सकते हैं। ये एक ऐसा संसाधन है जिसका आज सक्रिय रूप से इस्तेमाल होता है और जिसके लिए संघर्ष होता है। ये याद दिलाता है कि ये सिर्फ अकादमिक विषय नहीं है।
और वो 99% वाली बात,
वो शायद सबसे शक्तिशाली पंक्ति है। 99% से ज्यादा इंसानी कहानी के लिए पुरातत्व ही एकमात्र आवाज है। इसके बिना हम अपने अतीत के बारे में गहन अज्ञानता में रहेंगे। ये इस विषय की अहमियत बताता है।
ये सब बातें सिर्फ अकादमिक नहीं है, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कुछ लेना देना है, क्यों?
बिल्कुल है। सबसे पहली बात तो ये समझना कि पुरातत्वविद कैसे बिखरे हुए अधूरे सबूतों से एक कहानी बनाते हैं। ये हमारी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को तेज करता है।
कैसे?
हम सीखते हैं कि किसी भी दावे या खबर पर सवाल कैसे करें, सबूत क्या है, क्या ये सबूत पूरी कहानी कहता है, कहने वाले का अपना कोई नजरिया तो नहीं।
हाँ, ये तो आज के जमाने में बहुत जरूरी स्किल है।
बिल्कुल। दूसरा, पुरातत्व हमें समय का एक बहुत लंबा नजरिया देता है, डीप टाइम पर्सपेक्टिव। जब हम हजारों लाखों साल के स्केल पर सोचते हैं तो आज की दिक्कतें थोड़ी अलग नजर आती हैं, शायद थोड़ी कम बड़ी।
पर्सपेक्टिव बदल जाता है।
हाँ, और ये हमें जलवायु परिवर्तन जैसे लंबे समय तक चलने वाले प्रोसेस को समझने में भी मदद करता है।
और म्यूजियम वगैरह जाना?
हाँ, अगली बार आप किसी म्यूजियम या पुरानी जगह पर जाएंगे तो आपका अनुभव बिल्कुल बदल जाएगा। आप सिर्फ पत्थर या मूर्तियां नहीं देखेंगे, आप कोशिश करेंगे उनके पीछे की कहानी समझने की, उन लोगों की जिंदगी महसूस करने की।
सही बात है।
सांस्कृतिक समझ गहरी होती है।
और आजकल हम जमीन के अधिकार, राष्ट्रीय पहचान या पुरानी चीजों की वापसी को लेकर इतनी बहसें सुनते हैं।
हाँ, चलती रहती हैं।
उन बहसों को समझने में भी मदद मिलती है, क्योंकि अक्सर उनकी जड़ें पुरातत्व की अलग अलग व्याख्याओं में होती हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब और ये विषय हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बल्कि आज के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है।
बिल्कुल। पॉल बान की ये किताब हमें यही बताती है कि पुरातत्व सिर्फ अतीत की धूल झाड़ना नहीं है, ये एक जिंदा, आधुनिक और बहुत जरूरी विज्ञान है। ये हमें बताता है कि हम इंसान कौन हैं और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे।
ये खजाने की खोज नहीं बल्कि खुद को खोजना की यात्रा है।
क्या बात कही। मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कैसे टेक्नोलॉजी इस फील्ड को लगातार बदल रही है। लाइडार, प्राचीन डीएनए, ये भविष्य के लिए कितने रोमांचक दरवाजे खोल रहा है।
हाँ, वो तो है।
और ये भी कि कैसे पुरातत्व उन लाखों करोड़ों गुमनाम लोगों को आवाज देता है जिनकी कहानी इतिहास की किताबों से गायब है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये रही कि हमारा ये साझा अतीत, ये विरासत कितनी कीमती है और साथ ही कितनी नाजुक भी। बान की किताब एक तरह से हमें जगाती है कि हम इसे समझें, इसकी कद्र करें और इसे बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें।
हाँ, ये सिर्फ पुरातत्वविदों का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अतीत को समझे बिना हम अपना भविष्य ठीक से नहीं संवार सकते।
बिल्कुल सही कहा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।